नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वीवी जी रामजी विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी। लोकसभा में आज विधेयक पर हो रही है विशेष चर्चा। राज्य को मिली सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की सौगात। 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से नवादा में 2 पंप स्टोरेज बिजली घर का निर्माण होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा, निर्माण कार्यों को लटकाने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। 19 दिसंबर के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का भी अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा के स्थान पर नए विधेयक विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी के नाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। आज लोकसभा में इस विधेयक पर विशेष चर्चा हो रही है। इससे पहले समस्तीपुर से लोजपा रामविलास की सांसद श्यामबाबी चौधरी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर बिना मतलब की बातें कर रहा है। उन्होंने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि गांधी जी का ही विचार था कि राम राज स्थापित होना चाहिए।
तो ये सिर्फ कह देना कि महात्मा गांधी जी के विचारों से एनडीए वालों को दिक्कत है, ये गलत है, ये गलत तरह का नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है। और ये हम लोग विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि आपको राम जी के नाम से क्या दिक्कत है। जब भी राम राज्य का बात होता है, जब भी किसी गरीब को सशक्त करने का बात होता है, जब भी कोई अच्छी बिल आती है, आज जब गरीबों को सशक्त करने का बात हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को, गाँव को सशक्त करने का बात, जो मॉडर्न एक होता है कि विकसित गाँव बने उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब आपको क्यों तकलीफ हो रही है।
इधर राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा योजना में हुई गड़बड़ियों को छुपाने के लिए वीवी जी रामजी विधेयक लाया है। श्री झा ने कहा कि मनरेगा योजना ने देश को एक सुरक्षा कवच दिया था, लेकिन सरकार इस योजना को मजबूत बनाने के बजाय इसकी आत्मा को ही खत्म कर रही है।
ये 90-10 का रेशियो था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 60-40 कर दिया। पूरी की पूरी जो इसकी अधिकार बेस्ड अप्रोच, उसको खारिज कर दिया आपने। और किस नाम से? जी राम जी। और जाहिर है कि नाम, किसी के नाम में राम होना तो वो कई चीज का लाइसेंस नहीं होता है। 30 जनवरी 1948 का सबसे बड़ा गुनहगार के भी नाम में राम। सरकार को इस तरह की एडवाइस दे कौन रहा है? एक योजना जिसने इस देश को एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया, बजाय उसके कि उस योजना को और बलवती बनाते, आप उसके स्पिरिट को खत्म कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और कुछ चयनित एजेंसियों के बीच आज 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नवादा जिले में 2120 मेगावाट क्षमता वाले 2 पंप स्टोरेज बिजली घरों का निर्माण किया जाएगा। पटना के विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। इससे राज्य में स्वच्छ और निर्बाध बिजली आपूर्ति को और मजबूती मिलेगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
1 करोड़ परिवार को रूफटॉप पैनल लगाया जाएगा और जिसमें 2 मेगावाट तक जो है जो सोलर पैनल लगाएंगे उनको 60% और जो 3 मेगावाट तक है उनको जो है 40% तक सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और विशेष करके हमारा जो नेचर है, जो इकोसिस्टम है, जो पॉल्यूशन का समस्या है, तो ये सोलर एनर्जी हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है।
केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पारंपरिक टोल वसूली प्रणाली के स्थान पर अगले वर्ष के अंत तक पूरे देश में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लागू कर दी जाएगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद लगभग 1,500 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों के डेटा पूरी तरह सुरक्षित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के डेटाबेस से कोई सेंधमारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसके लगभग 134 करोड़ सक्रिय धारक हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने अपने डेटाबेस की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा अवसंरचना लागू की है। राज्य सरकार ने भूमि विवाद से संबंधित विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए कल पटना के ज्ञान भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR और अंचलाधिकारियों के साथ भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला में भूमि सुधार के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा है कि विभाग की लंबित योजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा। श्री सिंह ने ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर कार्य पूरा नहीं करने वालों को कोई नया काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा।
आने वाले समय में वैसे ठेकेदार जिनके यहाँ बहुत सारे विपन लंबी है, वो जब तक अपना पिछले जो बचे हुए ड्यूज है उसको क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आने वाले समय में किसी भी निविदा में वो भाग नहीं ले सकेंगे। और जो संबंधित प्राधिकारी हैं, उनको भी एक महीने का समय दिया गया है। उस एक महीने के अंदर में उनकी दायित्व है कि वो कैसे बकाये राशि की वसूली करते हैं।
निगरानी विभाग भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में निगरानी विभाग की टीम ने आज अरवल जिले के बंसी थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद मुस्तफा को 5,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कदवा गांव में एक भूमि विवाद की जांच के दौरान एक पक्ष से रिश्वत की मांग कर रहा था। जहानाबाद की एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में दोषी 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 10,000 रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। इधर अररिया के व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद अदालत ने शराब बरामदगी मामले में दोषी एक व्यक्ति को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1,00,000 रूपये का अर्थदंड भी सुनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सीवान के सदर अस्पताल परिसर में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पांडे ने कहा कि प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के संकल्प में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं 7 निश्चय 3 में सबसे ऊपर रखी गई हैं।
50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक यूनिट सदर अस्पताल सिवान में बनने के लिए आज शिलान्यास हुआ है। इसकी कुल लागत 23,75,00,000 अनुमानित है और ये 1 साल में बनके तैयार हो जाएगा। इसके बनने से फायदा ये होगा कि जो क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनको रेफर करना पड़ता था पटना या अन्यत्र, अब वैसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी यहाँ होने लगेगा और अभी ये आज हमने शिलान्यास किया है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र प्रसाद रोशन ने कहा कि राज्य सरकार SC ST समुदाय के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। श्री रोशन ने पटना के तारामंडल में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ग के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
बिहार अनुसूचित जाति जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा जो शोध संस्थान नेशनल सेमिनार, ये महत्वपूर्ण इस माने में हो जाता है समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों के लिए। निश्चित रूप से यह अनुसूचित जनजाति शोध प्रशिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण करेगी काम करेगी।
सेमिनार में केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी, विषय विशेषज्ञ और अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत डिब्रूगढ़ लखनऊ के बीच 19 दिसंबर को विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि यह ट्रेन बिहार के कटिहार, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा स्टेशनों से गुजरेगी। 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे डिब्रूगढ़ से यह रवाना होगी, जबकि वापसी में 23 दिसंबर को लखनऊ रेलवे स्टेशन से खुलेगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अधिकतर भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में विभिन्न स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है।
18 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 राज्य के पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के शेष भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर के रितेश कुमार साह ने बिना गियर वाली साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचकर कीर्तिमान बनाया है। रितेश ने 41 दिनों में यात्रा पूरी कर बीते 3 दिसंबर को एवरेस्ट की चोटी चढ़कर बेस कैंप पर तिरंगा लहराया। हालांकि इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाने से वापस लौटने में परेशानी हो रही है। इधर रितेश की सकुशल वापसी को लेकर परिजनों ने स्थानीय सांसद अजय मंडल और जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी से मिलकर सहायता के लिए गुहार लगाई है। प्रदेश के सभी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया जनवरी महीने में शुरू होगी। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रोन्नति प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कल पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। श्री सरावगी ने आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पूजा अर्चना के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वयं यह जानकारी दी है। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की। श्री कोविंद ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ यह जानकारी साझा की है। सिख पंथ के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को लेकर आज तीसरे दिन भी प्रभात फेरी निकाली गई। प्रकाश पर्व का मुख्य समारोह 27 दिसंबर को होगा। रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत इटमा बाजार में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में आज पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीबीजी रामजी विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी। लोकसभा में आज विधेयक पर हो रही है विशेष चर्चा। राज्य को मिली सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की सौगात। 13,000 करोड़ रुपए के निवेश से नवादा में 2 पंप स्टोरेज बिजली घर का निर्माण होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा, निर्माण कार्यों को लटकाने और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। 19 दिसंबर के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का भी अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।